SBS हिंदी।
दोस्तों, भारत में चुनाव चल रहे हैं और उनके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और भारत में ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था की प्रतिनिधि जयश्री पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में थी, तो उनसे बात करने का मौका मिला। उनसे हमने कुछ सवाल पूछे ताकि समझा जा सके कि भारत में हो रहे चुनावों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, वहाँ चल रहे मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है। सुनिए ये बातचीत। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जयश्री हैं, भारत से आई हैं ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारा काम करके आई हैं भारत के सामाजिक परिवेश पर। जयश्री, आपका स्वागत है।
बहुत शुक्रिया विवेक।
जयश्री, भारत में इस वक्त चुनाव हो रहा है और मैं अक्सर ये जुमला सुनता हूँ कि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है आज़ादी के बाद। क्या वाकई ऐसा है और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के जो इसको इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं?
विवेक, देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है इतिहास में। 90 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। तो आप स्केल देखिए, इतना बड़ा स्केल, इतना मैसिव स्केल जो है, ये खुद अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। और जो की इश्यूज होते हैं चुनाव में, देखिए, ये तो वो हैं जो पुराने मतलब हम साल दर साल चुनावों में हमने देखा है, वो इश्यूज इस वक्त भी ऑब्वियसली हम उन पे चर्चा देख रहे हैं, चाहे वो औरतों के हक की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट नौकरी की बात हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वही सब मुद्दे हम चुनाव दर चुनाव देखते हैं। इस चुनाव में भी हमें इन विषयों को देख रहे हैं कि उठ रहा है। लेकिन चुनाव के पहले ज़्यादातर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो प्रॉमिस तो करते हैं। देखिए, वो प्रॉमिस करते हैं कि नौकरी देंगे, प्रॉमिस करते हैं कि औरतों के लिए सेफ बनाएंगे पब्लिक स्पेसेस को, एजुकेशन देंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब हम देखते हैं कि वो इन अधिकारों की बात नहीं करते हैं और इन प्रॉमिसेस पे खरे नहीं उतरते हैं। अब इंडिया में राइट टू एजुकेशन कानून भी है कि सब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए स्कूलों में। इसकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट सब प्रॉमिस करेंगे, सबके मैनिफेस्टोज में होंगे, लेकिन जब हम जाते हैं गांवों में, जब हम ये देखते हैं, तो हम देखते हैं आज भी जो निचले तर से, जो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, दलित हैं, आदिवासीज हैं, इनके बच्चे आज भी, इनको उस तरह से एजुकेशन नहीं मिलता है, आज भी इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा तो ये कहना है कि हम जो देखना चाहेंगे वो सबसे ज़रूरी ये है कि मानव अधिकार, जो बेसिक फ्रीडम्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, इनको सेंट्रल रखा जाए और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए और जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट जीते, वो फिर वो पहले तो प्लेज करे, कमिट करे इन मानवाधिकारों का, और फिर आके अपहोल्ड भी करें इन पे, इनको अमल में भी लाएं।
आप ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था से जुड़ी हैं और आपने काओ विजिलेंटलिज्म पर बहुत काम किया है, क्या गाय इस चुनाव में एक मुद्दा है?
पिछले चुनाव से हमने देखा कि गाय को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया था और इसकी वजह से कई स्टेट्स में, कई राज्यों में हमने देखा कि ये जो विजिलांते ग्रुप्स हैं, काउ प्रोटेक्ट, गौ रक्षा समितियाँ हैं, ये उठ खड़ी हुई और इसकी वजह, और उन्होंने काफ़ी टारगेट किया माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, स्पेशली मुस्लिम और दलित कम्युनिटीज़ को। मई 2015 से आज तक 44 लोगों को मार दिया गया गाय प्रोटेक्शन के नाम पे। हाँ, और उसमें से 36 मुस्लिम्स थे। और हमने जो स्टेट का रिस्पांस भी डॉक्यूमेंट किया, वो ये था कि कई केसेस में पुलिस ठीक तरह से जांच नहीं करती है, टाइम पे एफआईआर नहीं दर्ज करती है। मर्डर का एफआईआर दर्ज करने की जगह काउ प्रोटेक्शन लॉज के अंडर वो विक्टिम्स और विटनेसेस और उनके घर वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, जिससे कि वो डर जाएं और आगे जाके अपने केस को परस्यू नहीं करें।
तो क्या इस आधार पर, इन बातों को सोचते हुए वोट कर रहे हैं लोग, या उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं है?
देखिए, लोग तो बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम चाहते हैं. वो तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ें, वो चाहेंगे कि नौकरियां मिलें, वो चाहेंगे कि वो जिस तरह से जिससे प्यार करना चाहते हैं कर सकें, जो खाना चाहते हैं खा सकें. तो बेसिक फ्रीडम्स की बात करें तो लोग तो अपने नेता हैं उनसे वही चाहते हैं लोग. इस वजह से ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई दूसरे भारत में बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएँ हैं, जिन्होंने लिखा है सारे पोलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स को लिखा है कि भाई आप मानव अधिकार की बात करें, उस पर कमिट करें. और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको अकाउंट में लिया है अपने मैनिफेस्टोज में, और हम यही चाहेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करें.
इन चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात हो रही है उसकी, फेक न्यूज को लेकर. चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक या ट्विटर के जरिए हो, जो फेक न्यूज का प्रसार है वो कितना इम्पोर्टेंट हो इन चुनावों में.
देखिए, जो ये इंटरनेट है ना और सोशल मीडिया, इसका हमने देखा है कि अगर अच्छा यूज़ हो इसका तो बहुत डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन फिर ख़राब यूज़ भी है. हम सोचा तो यही था कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी डेवलपमेंट आएगा, गवर्नमेंट के सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स भी रहे, कई चीज़ों को अच्छा भी हुआ है, चाहे यू नो कोर्ट्स को डिजिटाइज करना या फिर बैंकिंग और इस तरह से. लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, सिस्टमैटिक कैंपेन्स चल रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इनको इस्तेमाल करना. भारत में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हम प्रॉब्लम पूरे विश्व भर में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर. प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स क्या है आपका, गवर्नमेंट का, कि किस तरह इससे इसको एड्रेस करें. तो एक तो पहला है कि जो ये फेक न्यूज़ की वजह से वायलेंस ना हो, इसके लिए ना इंडिया में इंटरनेट पूरा शट डाउन कर देते हैं, ये पूरा इंटरनेट को बंद ही कर देते हैं उस राज्य में या उस डिस्ट्रिक्ट में. पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन इंडिया में होते हैं, और इससे आपके मानव अधिकारों का वायोलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है या बाकी भी. तो एक तो ये रिस्पांस जो है बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है, राइट्स वायोलेटिंग है. दूसरा, अभी भारत ने दिसंबर में नए रूल्स प्रपोज किए हैं इंटरनेट के लिए, इसलिए है ज़्यादातर कि ये फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की चीज़ों को किसी तरह एड्रेस कर सकें. लेकिन उससे ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगा, उससे ये जो नए रूल्स हैं उसकी वजह से इनफैक्ट सरकार का इंटरनेट पे कंट्रोल बढ़ जाएगा, और ये जो बेसिक राइट्स हैं, प्राइवेसी की राइट है, निजता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की राइट है, इनक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है, ये सारे वीकन हो जाएंगे.
आखिरी सवाल जयश्री, पिछले 5 साल में मानवाधिकारों की बात करें, भारत कितना बदला है?
एक अगर नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म की बात करें ना, तो एक बार भारत के बाहर भी जाएं तो ये ना हम विश्व भर में देख रहे हैं कि एक नेशनलिज्म पॉपुलिज्म का राइज हुआ है. कुछ देखिए अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस को उठाते हैं, ये बात करते हैं, लेकिन इसमें एक हेट की बात भी होती है किसी कम्युनिटी के खिलाफ. लेकिन इंडिया में ना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस रहे हैं हमेशा से, सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, मीडिया है, और थोड़ी वीकनिंग उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की भी काफ़ी इन नेशनलिस्ट हम ट्रेंड देखते हैं सब जगह, तो ये भी एक दिखता है. तो इंडिया में भी सिविल सोसाइटी पे अटैक्स, डिसेंट पे अटैक, कानून का इस्तेमाल करके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और ह्यूमन राइट्स लॉयर्स को जेल में डालना, उनकी फंडिंग बंद करना, काम नहीं करने देना, स्टूडेंट्स को भी सेडिशन में जेल में डाले. तो वो जो स्पेस है सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, ये थोड़ा कम होता दिख रहा है. लेकिन ये ज़रूरी है बोलना कि ये सारे लॉज पहले भी इस्तेमाल होते थे, पहले भी यूज़ हुए हैं. ये पिछले 5 साल की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन एक तरह से इंडिया भी उसी ट्रेंड, वो पॉपुलिस्ट ट्रेंड जो हम देख रहे हैं बाकी जगह, इंडिया में भी ये हम देख रहे हैं.
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय और ये बहुत सारी जानकारी देने के लिए जयश्री.
बहुत बहुत शुक्रिया.
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ.
आपके विचार हमें बताएं. SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.